मेरे अजीज साथियों नमस्कार। आज 7 फरवरी 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज हालांकि शीर्षक नया है जिस विषय पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो कल के विषय से जुड़ा हुआ है। कल हम लोगों ने इस विषय पर बात की थी कि जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, देखिए समस्याएं कई रूपों में हमारे सामने आ सकती हैं, है ना। समस्या का मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम ही है, व्यवहार की भी समस्या हो सकती है, दूसरे के साथ जो बहस हो रही है उसकी भी समस्या हो सकती है, जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसकी भी समस्या हो रही है। तो कई तरह की समस्याएं जीवन में आती रहती है, तो आप सभी तरह की समस्याओं को इसमें शामिल कर सकते हैं कि जब भी हमारे सामने समस्या आती है तो हमारा जो व्यवहार होता है वो व्यवहार या तो उस समस्या को बढ़ा देता है, यानी कि आग में घी डालने का काम करता है, पेट्रोल छिड़कने का काम करता है, या फिर हम उससे छोड़ छाड़ करके किनारे हो जाते हैं, एक मूक दर्शक की तरह बन जाते हैं कि भैया समस्याओं को खेलने दो मैदान में, हम तो खिलाड़ी नहीं बनेंगे बल्कि हम तो देखने वाले दर्शक बनेंगे, या फिर यह है कि हम उसे घटाने लगते हैं, घटाने में अपना योगदान देते हैं। और जो सबसे व्यावहारिक जो कदम होता है वो घटाने का ही होता है, और जिसके बारे में मैंने कुछ बातें आप लोगों से शेयर की थी। मित्रों उसी से संबंधित एक और समस्या है, सच ये पूछिए कि जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं उन समस्याओं से ही जुड़ी हुई एक समस्या है, और आइए आज हम उस पर बात करते हैं। समस्याओं से जुड़ी हुई समस्या यह है कि जब हम समस्याओं के निदान के बारे में सोचते हैं, चलिए अब करते हैं को हम नहीं जानते जाते, है ना, जब हम सोचते हैं कि समस्या का निराकरण हम कैसे करें, तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है। और ये जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये बड़ी सूक्ष्म है और बड़े मनोवैज्ञानिक स्तर की है। सामान्य तौर पर हमें समझ में नहीं आती बात, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक स्तर पर है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन होती बड़ी प्रबल है। प्रबल इस मायने में कि इसका इंपैक्ट बहुत गहरा होता है, और मुश्किल ये है कि हमें पकड़ में नहीं आ रही, हमारी समझ में नहीं आ रही है, और इसीलिए वो बढ़ाती चली जाती है हमारी समस्याओं को। और अब मैं बात कर रहा हूं उस समस्या की जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। मित्रों वह यह है कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो देखिए आप दो काम करेंगे। पहली बात तो यह है कि आप उसको हल कर रहे थे, पहले से हल करते आ रहे थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला, राइट। दूसरा यह हो सकता है कि आप उसके बारे में अभी सोच रहे हो। मैं एक्शन ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूं, मैं तटस्थता की बात नहीं कर रहा हूं। जब तटस्थ है तो बात सबसे आसान काम होता है, तटस्थ रहना। एक्शन, या तो आप उस पर एक्शन ले चुके हैं या उस पर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि प्लान कर रहे हैं। अब आप देखिए कि हमारे सामने जो मैंने मनोवैज्ञानिक समस्या की बात कही है वो क्या होती है। होती यह है मित्रों कि अगर मैं उस समस्या को सुलझा रहा हूं, पहले से ही सुलझा रहा हूं, और वो समस्या नहीं सुलझ रही है, तो मुश्किल ये होती है कि जब मैं उस समस्या के बारे में किसी से बात करता हूं या किसी से सलाह लेना चाहता हूं, तो मैंने जो जो भी उसके लिए किया है, मैं केवल उन्हें बताता ही नहीं हूं कि मैंने ये किया है, बड़े सूक्ष्म लेवल पर, बहुत ही महीन बारीक स्तर पर मैं सच यह है कि अपने आप को जस्टिफाई करने लगता हूं, अपने आप को सही ठहराने लगता हूं कि नहीं देखिए मैंने तो सब कुछ सही किया है। मुश्किल यह है कि यह हल हो नहीं रहा है, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो समस्या में है, समस्या में ही कोई ना कोई समस्या है, मुझ में कोई समस्या नहीं है। और ये मित्रों बहुत सूक्ष्म, बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये बहुत ही बारीक स्तर पर होता है, बहुत ही सूक्ष्म धरातल पर होता है, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। अब आप देखिए कि अब मान लीजिए कि मैंने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया कि भैया मैंने तो देखिए जो कुछ भी करना था, जो कुछ भी किया जा सकता था वो मैंने सब कुछ किया। चलिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, आप सब नौजवान हैं और सब सिविल सर्विस की नहीं बल्कि दूसरे परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो चलिए मैं वहीं से एक उदाहरण उठाता हूं कि मैंने 2 साल 3 साल तक जमकर मेहनत की, सिविल सर्विस एग्जाम की मैंने तैयारी की, लेकिन नहीं हुआ, प्री में भी नहीं हुआ। अब जब नहीं हुआ तो अब मैं किसी से सलाह लेता हूं या किसी से बातचीत कर रहा हूं, और बातचीत करने के दौरान बट नेचुरल है कि वो पूछेगा भैया तुमने क्या क्या किया है, तो मैं उसे अब बता रहा हूं कि देखिए मैंने इस तरीके से अपनी पढ़ाई की है, ये किताबें पढ़ी है, इतने इतने घंटे में पढ़ता रहा हूं, मैं यहां रहा हूं, मैंने अपना सब कुछ इसमें झोंक दिया है, मैं ये बता रहा हूं। आप कभी गौर कीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं तो उस समय कुछ मैं इस तरीके से, इस अंदाज से बता रहा होता हूं कि सामने वाले के दिमाग में मैं ये बात बैठा सकूं, उसे ये भरोसा दिला सकूं कि भैया देखो मैंने तो जो कुछ भी किया है वो वही किया है जो किया जाना चाहिए था, मेरे करने में कोई कसर नहीं रह गई थी है, वो तो हो नहीं रहा है। अगर हो नहीं रहा है तो फिर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, प्रॉब्लम यूपीएससी संस्थान में होगी, इंस्टीट्यूशन में होगी, प्रॉब्लम पेपर जो आते हैं उनमें होगी, प्रॉब्लम सिलेबस में होगी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एग्जामिनर्स में हो सकती है कि पता नहीं वो कैसे कॉपी जांचते हैं, मैं लिख करके तो सब आता हूं और सही सही ही लिख के आता हूं लेकिन वो मुझे नंबर नहीं देते, तो प्रॉब्लम वहां होगी। प्रॉब्लम मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है। अब देखिए सेकेंड स्टेज क्या होगा बातचीत का, बहुत ही व्यावहारिक तरीके से सोचिए। अब वो मेरी बात सुनने के बाद, चलिए अब वो मुझे कुछ बताएगा कि भैया देखो तुमको ये करना चाहिए था, तुम या तुम ये करो, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वो अपनी बात कुछ रखेगा, डेफिनेटली रखेगा, भले ये बात हो कि वो अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पा रहा या सही बात ही नहीं रख पा रहा है, चाहे जो भी हो, लेकिन वो अपनी बात रख रहा है और आप तो भरोसा करके ही गए हैं ना कि भाई वो आपकी समस्या के लिए कुछ सुझाएगा। चलिए अगर वो सही भी सुझा रहा है तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है? प्रॉब्लम ये हो गई है कि आपने अपने आप को पहले ही सही मान लिया है कि मैं सही हूं, ये आपके अवचेतन मन पर है। देखिए हालांकि आप पूछने गए हैं कि भैया मुझे मेरी समस्या का हल बताओ, तभी आप गए हैं, लेकिन आपके पास जो समझने का जो पात्र होना चाहिए, जिस पर आप समझने का अपना प्रिंट करेंगे, छपाई करेंगे, वही ठीक नहीं है, वो पर्दा ही गड़बड़ है, क्योंकि वहां तो पहले से ही छपा हुआ है। और क्या छपा हुआ है कि नहीं मैं सही हूं, और आपको इसका अंदाजा नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं मित्रों कि आपको इसका अंदाजा नहीं है, बहुत कम लोगों को इसका अंदाजा होता है, बहुत कम लोगों को अंदाजा होता है। तो अब जब बातचीत शुरू हुई और वो अपनी बात बता रहा है, आप सुन भी रहे हैं, आप अपनी पूरी गंभीरता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं और बकायदे उन पॉइंट्स को नोट भी कर रहे हैं, लेकिन आप उस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बातों में आपकी आस्था नहीं हो रही है। जब आस्था नहीं है तो निष्ठा कैसे आएगी, क्योंकि आप तो मान करके चल रहे थे कि नहीं प्रॉब्लम मुझ में है ही नहीं, तो ये मुझे प्रॉब्लम क्यों बता रहा है कि नहीं इस तरीके से करो उस तरीके से करो, तो बात खत्म हो गई। अब आप अगर उनकी बातों को अपने ऊपर लागू भी करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना भी चाहेंगे, तो अब आपके साथ क्या समस्या आएगी? फ्रेंड्स आपके साथ समस्या ये आएगी कि चूंकि आपका विश्वास बहुत गहरा नहीं है उसने जो बताया है, तो लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि आप असफलता का प्रमाण दे चुके हैं कि मेरा 2-3 साल से नहीं हो रहा है, तो आपको डाउट तो अपने ऊपर है कहीं ना कहीं है, और आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार किया जाना चाहिए। उस सुधार के लिए आप वहां चले गए हैं, उन्होंने कुछ बता दिया है, तो अब उन्होंने जो बताया है जब आप उसको लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उस इम्प्लीमेंटेशन में जो आपकी अपने प्रति आस्था है वो लगातार इंटरफेयर करेगी, हस्तक्षेप करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि आप उसे विशुद्ध रूप से लागू नहीं कर पाएंगे। आप लागू तो कर रहे हैं लेकिन जिस तरीके से लागू किया जाना चाहिए या जिस तरीके से लागू हो जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और ये सब सबकॉन्शियस माइंड पर होगा, सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर होगा। इसीलिए देखा होगा मित्रों की खासकर जो ज्ञान का क्षेत्र होता है या जब हमारे यहां गुरु और शिष्य संबंधों के बारे में बात की जाती है तो उसमें संपूर्ण समर्पण की बात होती है। संपूर्ण समर्पण का मतलब क्या है? आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं तो अपने आप को कोई शरीर को समर्पित नहीं कर रहे हैं, आप अपने ज्ञान को समर्पित कर रहे हैं, आप इस बात को समर्पित कर रहे हैं, अपने ईगो को समर्पित कर रहे हैं, आप इस बात को समर्पित कर रहे हैं कि मैं कुछ जानता हूं, इसको समर्पित कर रहे हैं, यानी कि आप बिल्कुल एक नई स्लेट बनकर उनके सामने जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश स्लेट है, और अगर उसके ऊपर छोटा सा कुछ भी उभार दिया जाए, लिख दिया जाए, तो बिल्कुल उसमें चमकने लगता है। तो मित्रों एक मैंने उदाहरण लिया जानबूझ करके, एक ऐसा उदाहरण मैंने लिया है कि जिससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, आप सबको अपना अपना मूल्यांकन करने में शायद सहूलियत हो सकेगी। तो दोस्तों ये केवल इसी मामले में नहीं होता है, ज्यादातर मामलों में होता है। देखिए मैं तो सरकार में रहा हूं, होता ये था कि जब भी जूनियर्स आते थे, मान लीजिए उन्होंने कोई नोट लिखा या कोई काम किया, सामान्य जीवन में भी हम लोग यही करते हैं, तो जब आप उनको कहेंगे कि नहीं नहीं देखो ये गलत है, आप ध्यान दीजिएगा, कभी गौर कीजिए ना, इसके बाद ही गौर कीजिए, मेरे इस लाइफ मैनेजमेंट को सुनने के बाद गौर कीजिए, तो कहेगा कि नहीं नहीं सर मैं तो सही था, नहीं नहीं मैंने तो ऐसा किया था। मतलब पहला ही जो उसका वाक्य होगा वो डिफेंसिव होगा, यानी कि अपने को वो बचाना चाहेगा। वो ये नहीं समझ पाता कि जब आप अपने को बचा रहे हैं तो जो सामने वाला कह रहा है उसको आप कहीं ना कहीं नकार रहे हैं, उसको झूठा ठहरा रहे हैं, यानी कि वो जो सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। तो हमको करना क्या चाहिए, हमको उसकी बात सुननी चाहिए और बात सुनने के बाद फिर कोई उत्तर देना चाहिए, और उत्तर देने के दौरान में अपने को किनारे कर देना चाहिए, क्योंकि आप अपने को सबसे पहले लेकर के आते हैं, और जब आप अपने को सबसे पहले लेकर के आते हैं तो खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं, अपने को बचा रहे होते हैं, अपने को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। जब हम अपने को जस्टिफाई कर रहे हैं तो फिर सामने वाले की बात को हम स्वीकार कर ही नहीं पा रहे हैं। और मित्रों, इस स्टेज पर आकर हमारा जो विकास होना चाहिए, हमारी जो ग्रोथ होनी चाहिए, वो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि हम नया कुछ सीख नहीं रहे हैं, नया कुछ हम जोड़ नहीं रहे हैं, बस वो पुरानी डफली को ही बजाए चले जा रहे हैं, और उसमें से वो पुराना जो राग है वो निकलता चला जा रहा है। और दुनिया को चाहिए नई डफली और नया राग। उम्र की दृष्टि से आप नए हैं, राइट, लेकिन उसमें जो राग निकल रहा है वो नया नहीं है। वक्त की दृष्टि से हम रोज नए बनते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो चेतना है वो वही पुरानी है, वो नई नहीं बन पा रही है, और उसका नतीजा ये होता है कि हमारी समस्याएं भी पुरानी बनी रहती हैं। तो मित्रों, ये मैंने कुछ बातें इसके बारे में की हैं, आप सब भी इस पर अपने अपने तरीके से विचार करें, और सबसे अच्छा होगा कि इस कसौटी पर आप सब अपने को कस करके भी देखें। मुझे तो सच पूछे ये लगता है कि इससे बड़ा आपको मजा आएगा, मतलब मुझे तो मित्रों इसमें खूब मजा आता है। जब आप अपने कोई लैब बना लेते हैं, प्रयोगशाला बना लेते हैं, तो अद्भुत आनंद आता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।